فجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله. اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور اپنے زوم کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی تو وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی. کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوبصورت کر کے دکھایا تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ بے کر دیں. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے. تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. یہ تھی آیت نمبر 136 سے 137 136 to 137. اس کا عنوان ہے دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو. بیسیکلی یہ ایک جملہ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک دوسرا بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے. مشرکین کا ایک بہت ہی برا رواج ان آیات میں پیش کیا گیا اور وہ کیا تھا کہ جب فصل کاٹتے یا ان کے مویشیوں کے گھر جانور پیدا ہوتا تو اس میں سے حصے بانٹ لیتے. ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھتے, ایک بتوں کا رکھتے. ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ بتوں کے نام پہ خرچ کریں گے, کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے, چلتا رہے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا کہ اللہ کے لیے جو حصہ رکھا ہوتا اس میں کیڑا پڑ جاتا یا فصل نہ ہوتی یا کچھ بھی معاملہ ہوتا, وہاں فصل نہ اگتی. لیکن جو بتوں کے نام پہ جگہ ہوتی وہاں بہت اچھی فصل ہوتی. تو وہ اس وقت یہ بالکل نہ کرتے کہ اللہ کے حصے کے اندر کچھ ڈال دیتے اپنے بتوں کے حصے میں سے. اس کے برعکس جب معاملہ الٹ ہوتا تو پھر اللہ کے حصے کی فصل جو تھی وہ بتوں کو دینے لگتے. یہی معاملہ ان کا جانوروں کے ساتھ تھا. ان کو کیا لگتا تھا کہ اللہ تو اوپر ہے, وہ تو میں دکھتا نہیں, چھوڑو اس نے کیا کہنا ہے. ہاں یہ بت سامنے دکھ رہے ہیں, ان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. اللہ کو اس بات پہ اتنی غیرت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کہہ دی کہ جو تم مجھے دیتے ہو وہ بھی تم بتوں کو دے لو. آپ اس بات کو سنتے ہوئے ہو سکتے ہیں ہم سوچیں کہ کتنے نہ سمجھتے, کیسی بانٹ کرتے تھے, کچھ بتوں کو دیں, کچھ فلاں کو دے, کچھ فلاں کو دے. لیکن اگر آج ہم پریکٹیکل طور پہ دیکھیں تو ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ کیا آج ہمارے خرچ کے تین حصے نہیں ہیں؟ کچھ اپنی ذات پہ لگا لیتے ہیں, خواہشات پہ لگاتے ہیں, کچھ خانہ پوری کرنے کے لیے مسجد میں بھی ڈال دیتے ہیں, کوئی دین کی جگہ پہ دے دیتے ہیں, اور کثیر حصہ ہمارا شیطانی کام کو پروموٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے. ایک ایک رسم کے اوپر, ایک ایک خواہش کے اوپر ہم ہزاروں خرچ کرنے کو تیار ہیں. پھر جب کبھی جاب سے لے آف ہوتے ہیں, جب کبھی بزنس ڈاؤن ہوتا ہے, اور جب کبھی اکانومی ڈوبتی ہے, تو سب سے زیادہ ہم کٹ ڈاؤن کون سے خرچے کرتے ہیں؟ ہر ایک کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کر دے. ایسی ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنیاد بنا کے کہا کہ تم اگر اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق کرو گے تو یہ سوچو کہ کل تمہیں وہاں کیا ملنے والا ہے. یاد رکھیے, اپنی مشکلات میں, اپنی زندگی کے ایڈورس کنڈیشنز میں, یعنی ناموافق حالات میں جب تک آپ اللہ کے دین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, تب تک اللہ تعالیٰ کو آپ اس چیز کا ثبوت نہیں دیتے کہ مجھے اللہ تو سب سے پیارا ہے اور تو ہی جو کہے گا وہی میری زندگی کا حصہ ہوگی. اچھے حالات میں تو ساری کر لیتے ہیں, کیا بڑی بات ہے نماز پڑھنا, وضو کرنا کیا مشکل ہے. ویسے بھی منہ دھونا تھا, وضو کر لیا. وضو کرنا اس وقت آپ کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے جب وضو کرنا مشکل ہو. آپ سارا دن بیٹھ کے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں, بہت سارا کچھ سنتے ہیں, آپ ایک گھنٹہ بیٹھ کے کوئی اللہ کی بات بھی سن لیتے ہیں, کوئی بری بات نہیں. مشکل کب ہے؟ جب آپ کے گھر میں ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ اس وقت اللہ کی بات سننا آپ کے لیے مشکل ہے. یہ اصل امتحان ہے. دیکھیے, جتنا مشکلوں میں آپ اللہ کے دین پہ چلیں گے اتنا جلدی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے گی اور اتنا ہی سینہ زیادہ کھلے گا. وقال هذه انام وحرث خرجر, اور یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے, اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم, واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا. اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی ان کو حرام قرار دیا محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر, بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہ ہوں گے. یہ تھی آیت نمبر 138 سے 140, 138 سے 140. ان کا عنوان ہے دین کے اصل تقاضوں سے دور ظاہری رسومات کے دل دادا. عرب لوگوں کی کچھ بدعات یا رسومات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے دین کے نام پہ جاری کر رکھی تھی. اصل میں تو یہ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین سے جوڑتے تھے, اپنے آپ کو ان کی طرح منسوب کرتے تھے, لیکن دیکھا جائے تو حقیقی طور پہ جو دین ان کے اندر رواج پا چکا تھا وہ خود ساختہ دین تھا, اور جو ان کے بڑوں نے گھڑ لیا تھا اسی کو دین کہتے تھے. جانوروں اور پودوں اور فصلوں کے بارے میں بہت ساری خود ساختہ قسم کی نظر و نیاز ان لوگوں نے شروع کر رکھی تھی. بعض جانوروں کے بارے میں یہ کہتے تھے, مثلا کیسا جانور जानवर होता था कि जिसके नुतफे से 10 बच्चे अगर पैदा हो जाएं तो कहते थे ये बहुत बुजुर्ग है, ये पहुंचा हुआ है, लिहाजा अब ऐसे जानवर के ऊपर हम सफर नहीं कर सकते। इसी तरह बहीरा और साहिबा दो जानवर थे कि कहते थे इनके पेट से अगर कोई बच्चा जिंदा निकला तो उसको गोश्त को सिर्फ मर्द खाएंगे, हाँ अगर मुर्दा बच्चा निकल आया तो औरतें भी खा लेंगी। आज वुमेन डिस्क्रिमिनेशन की जो बात की जाती है, असल में ये दौरे जाहिलियत की अलामत है। औरत को इतना जलील समझते थे उस दौर में कि बाज चीजें जो मर्दों के लिए बिल्कुल वो पसंद नहीं करते थे, औरतों को उस पर मजबूर कर देते थे। अल्लाह ताला ने ऐसी बातों को सामने रख के हम सबको दावत फिक्र दी कि क्या आज हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्या आज हमने भी दीन के नाम पे कुछ खुद साख्ता काम तो नहीं किए, क्या आज हमारी भी कुछ ऐसी रसूमात तो नहीं कि जिसको औरत ना खाए और मर्द खा ले, किसी को पीरियड्स वाली ना खाए, क्या आज हमने भी कहीं कुंडों के नाम पे और कहीं कुछ इस किस्म की नजरों न्याज है कि जिसको हमने अपने ऊपर लागू कर लिया। ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि लोग इस किस्म की गुमराहियों का शिकार होते हैं कि जिसके बारे में उनको इतना यकीन होता है कि अगर हमने इससे उलट किया तो शायद सारा साल हम पे मुश्किल आएगी। इसी में कुछ चीजें, बस आप देखिए कि कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं कि कुछ खास जगहों पे जाके जानवरों को ज़िबा करना वो बायसे तबरुक समझते हैं और उनका ख्याल है कि जब वहां जाके बकरे छतरे ज़िबा होते हैं तो ये ज्यादा बायसे बरकत होते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो दीन के नाम पे पेश की जाती हैं, मसलन अगर शादी के मौके पर एक तो पहले मेहंदी लगाने की और तेल लगाने की रस्म ईजाद की, फिर उसमें कहा जाता है कि अच्छा देखिए कोई बेवा औरत इसमें शिरकत ना करे, और अगर किसी औरत के बच्चे पैदा ना हो या बच्चे पैदा हो के मरते जाए तो कहते हैं अब इसको किसी औरत के घर जिसके बच्चा पैदा हुआ 40 दिन तक ये वहां ना जाए, इसका साया बुरा होगा। बेवा को बुरा समझना और ऐसी लड़की जिसकी मंगनी टूट जाए उसको मनहूस समझना, ये क्या है, इसका पांव भारी है, ये जब से घर में आई ये मुश्किलें आ गई, इस घर में आ रहे हो तो ये बलाएं आ रही हैं, ये सारी चीजें याद रखिए दीन नहीं होता। लेकिन जब लोग असल दीन से दूर होते हैं, जब ये किताब हाथ से छुटती है तो फिर कुछ तो करेंगे ना, कोई दीन के नाम पर कोई रौनक मेला तो होगा। फिर लोग क्या करते हैं, साल में कुछ चंद रातें बना लेते हैं, उसे एक रात सारी रात जागते रहो, चलो पूरे साल की इबादत, चलो फला मौके पे खाना पका के हमसायों को भेज दो, इस मौके पे नजर न्याज कर दो, खैर है जब महीने की 11 तारीख है दूध की खीर बना दो तुम्हारी भैंसे ठीक रहेंगी। याद रखिए ये दीन कहाँ से आया, कभी दीन के नाम पे कोई काम करने या कराने लगे तो एक दफा जरूर सोच लें किसकी सनद क्या है, किसने कहा। हर रस्म के पीछे शिर्क होता है और हर शिर्क जो वो इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला होता है। अल्लाह ताला हमारे आंखों को खोल दे, और ये आंखें कब खुलती हैं, जब कुरान खुलता है। जहां ये रसूमत कसरत से होंगे उसकी एक पहचान याद रखिए, वो आपको कुरान पे नहीं आने देंगे। आप उनसे कहें कि हम यहाँ कुरान पढ़ लें, कुरान का बराह रास्त टेक्स्ट हम यहाँ कुछ पढ़ लें, क्या ख्याल है आप कुछ पढ़ा दें, कहेंगे नहीं ये औरतों के पढ़ने की चीज नहीं, ये आम लोगों के पढ़ने की चीज नहीं, इसके लिए पहले जाओ 5-6 उलूम सीख के आओ, 10-15 साल लगाओ फिर आना। नतीजा क्या होता है कि उसी में इंसान के दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है, और वो लोग जो असल दीन से नहीं जुड़ते फिर वो इतने संगदिल कभी कभी हो जाते हैं जो इनका हाल था कि अपने बुतों के नाम पे अपनी औलाद तक को कत्ल कर देते थे, चढ़ावे चढ़ाना कहते हैं। और आज के दौर में भी देखिए कि वो लोग जो अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल को तो इस्तेमाल नहीं करते, अपनी मदद आप के तहत वो कोई काम तो करना पसंद नहीं करते, और आज भी यही नारा लगा देते हैं कि अपनी औलादों को खुद कत्ल कर दो, कम बच्चे खुशहाल घराना। अरबों में बच्चों के कत्ल की कई किस्में थी, उन्हीं में एक ये भी किस्म थी। आज देखिए कि इसकी कितनी बाकियात हैं कि बाज़ माएँ जब बच्चे पैदा नहीं होते तो मन्नत मान लेती हैं कि अच्छा पहला जो बच्चा होगा उसको फलां कब्र पे जाके छोड़ाऊंगी, ये फलां डोले शाही का चूह है, ये फलां फलां है, ये फलां अब्दुल कादर जिलानी की कब्र पे होगा। और आप देखिए कि बिल्कुल सही सालम पैदा होने वाले बच्चों को ऐसी जगहों पर छोड़ के आया जाता है जो बच्चों के सरों के ऊपर लोहे की टोपियां पहना देते हैं, सर छोटे रह जाते हैं, अकल नहीं होती, और फिर वो शिडोले शाही के चूहे बना के उनको कहते हैं ये कब्रों पर छोड़े हुए। आज भी जाके इंटीरियर के इलाकों में देखिए कितना शिर्क है, अल्लाह ताला कहते हैं ये शिर्क अगर तुमने इसकी असल पढ़नी है तो सूरत अलनाम पढ़ लो। मैं कहती हूँ सूरत अलनाम इतनी ज्यादा लाजमी है देहातों में पढ़ाने की, जो चीज मैंने कुरान पाक के मिजाज से समझी, इस सूरत में इतनी गुमराहियों का जिक्र है कि वाकई आज के दौर में उसी से मिलती हुई बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला हमें इस पैगाम को आम करने वाला बना दे। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नात मारूशात वगैर मारूशात, और वही है जिसने बागात पैदा किए और वो भी जो छतों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो छतों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीजें मुख्तलिफ होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबा भी होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हुए भी नहीं होते, इन सब के फलों में से खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है उसके काटने के दिन दिया करो, और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। और मवेशियों में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिला शुबा वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आयत नंबर 141-142। इसका उनवान है कायनात इंसान की खिदमतगार है। اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کے لیے غذائیں پیدا کیں، زمین پہ اگتی ہیں، کچھ درختوں کی صورت میں، کچھ پودوں کی صورت میں، کچھ بیلوں کی صورت میں۔ اگر ہم تدبر کرنا چاہیں تو کیا ہم میں سے کبھی کوئی کسی ایسی جگہ سے گزرا کہ جہاں بیلیں چڑھی ہوئی ہوں؟ کبھی آپ نے انگور کی بیل دیکھی؟ کبھی آپ نے شہتوت کی بیل دیکھی؟ شہتوت کا تو ایک درخت ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک خاص قسم کی بیل ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظام کر دیے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی اس کی حکمت ہے نا۔ بس آپ دیکھیے کہ تربوز یہ کہاں اگتا ہے؟ بیل پہ اگتا ہے۔ کبھی درخت پہ اگتا تو کیا ہوتا؟ کوئی درخت کے نیچے غلطی سے بھی نہ جاتا، ایسے ہی ہے نا۔ ایک شخص تھا، اس نے غور کیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تربوز جو ہے یہ درخت پہ کیوں نہیں اگتا؟ کیونکہ عقل تو یہی بتاتی ہے کہ اتنا بڑا ہے، زمین پہ کیوں رہے، کسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا سوچ رہا تھا، اور وہ درخت بیر کا تھا۔ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نا ایک بیر اوپر سے اس کے سر پہ گرا، تو فوراً چلا اٹھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے تربوز کو درخت پہ نہیں اگایا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیا کریں، کائنات کو دیکھیں، ایک ایک پتے کو چھوئیں، ایک ایک درخت کو چھوئیں۔ میں تو اتنی سٹک رہتی ہوں، دیکھتی ہوں درختوں کے اوپر، آپ دیکھیے کہ تنے کے اوپر پوری پوری بیلیں چڑھی ہوئی ہیں۔ کئی ایسے درخت ہیں کہ ان کے نیچے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسو گر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے یہ کس کے فیصلے ہیں، اللہ نے ہم سب کے لیے رکھے۔ بھنڈی تو رہی ہے وہ زمین پہ اگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے جو گچھے رکھے ہیں کیسے اوپر اس کی پتوں کی چھت بن جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے فوڈ کے پیکٹ لٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیل پیک، ٹیٹرا پیک آپ کو دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے 5 گرام کا ایک پیک بنا لیا، آپ کہتے ہیں یہ 1 لیٹر پیکنگ ہے اورنج جوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اورنج کے اندر آپ کے لیے ایک ایک ڈراپ کو سیل پیک کیا، اس کی پھانکوں کو کھولے۔ رمضان نہ ہوتا تو آپ کو بہت کھانے کو ملتا اس ٹرپ میں، لیکن آپ اس سارے تجربات کو افطاری کے وقت کیا کریں۔ آپ کے اس سال کی افطاری بالکل فرق ہونی چاہیے۔ جو چیز پکائیں آپ اس پہ غور کریں، بھنڈی میں لیس کہاں سے آ گئی، کیوں آپ کہتے ہیں کیوں آتی ہے اس میں لیس؟ آپ ذرا بھنڈی پہ پڑھ کے دیکھیں۔ کل میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، میرا دل چاہے کہ میں ساری آپ کو پڑھا دوں۔ ایک ایک چیز کے اندر حکمت ہے۔ آپ صرف ان چیزوں کے جا کے انگریڈینٹس کو دیکھ لیں، ان کے افیکٹس کو دیکھیں، یہ ہماری باڈی کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، ہمارا جو نظام ہضم ہے، اللہ اکبر، آپ اس پہ اگر ایک دفعہ A to Z اس کو پڑھ لیں، آپ بار بار کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا حال کے کھا کھا کے کھاتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ یہ منہ کو جو لقمہ دیا، یہ جسم میں کہاں گیا، اس کا کیا بنا، اس کو کس نے بتایا۔ کبھی ہم نہیں کہتے کہ اس وقت ہم فروٹ کھا رہے ہیں، ہم کبھی جسم کو یہ نہیں کہتے کہ مرچیں کھا رہے ہیں، بس ہم اپنا کام کر کے منہ میں ڈال کے سو جاتے ہیں، اور جسم کیسے اس کو ختم کرتا ہے، کیسے آپ کے وائٹامنس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، کیسے وہ سالٹ کو نکالتا ہے، کیسے وائٹامنس اور کیلشیم کو الگ کرتا ہے۔ اندر ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے۔ جیسے دنیا میں یہ زمین ہے نا، تو ہماری زمین جو ہماری اسکن ہے، اور جو گھاس اگی ہوئی یہ ہمارے جس اسکن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ وہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ زمین میں جو پانی ہے، تمہاری بلڈ ویسلز میں جو بلڈ اور پانی ہے یہ جسم ہے۔ یعنی ہمارے اپنے اندر پورا جہان آباد ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں، ہم تو ظاہر میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا کچھ تمہیں دیا۔ میں آج صبح ایک ایکسپیرینس کر کے آئی، اور ہمارے بالکل جہاں سے ہم آ رہے ہیں تو سامنے ایک درخت کے اوپر بڑی خوبصورت قسم کے، جیسے سیب بھی نہیں لگتے اور لوکاٹ بھی نہیں لگتے، پیلے اور سرخ رنگ کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز لگی ہوئی، روز ہی میں دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اتنا پھل لگا ہوا ہے، یہ اتار نہیں رہے لوگ۔ آج گئی تو رات شاید بہت ہوا تھی تو کتنا زمین پہ گرا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس میں سیب کو اٹھا کے دیکھا تو بالکل وہ اتنا جوسی تھا۔ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بس ایسے ہی ہے، یعنی یہ کوئی کھانے کے لیے نہیں، یہ بس خوبصورتی کے لیے ہے۔ بالکل اس کے سامنے ایک سبز درخت اور اس پہ سرخ چھوٹے چھوٹے ایسے گچھے لٹک رہے ہیں، کہہ یہ خوبصورتی کے لیے ہے۔ میں حیران تھی کہ اللہ نے صرف ہمارے پیٹ کا انتظام نہیں کیا، اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھوک لگائی اور کھانا دیا، بلکہ اس نے ہماری آنکھوں کے حسن کا بھی خیال کیا۔ اس نے ہمیں حسن پرست بنایا تو اس کائنات کو ہمارے لیے سجا دیا۔ ہم ایک چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ خریدتے ہیں، کتنے ڈالرز کا آتا ہے وہ، کیا ہے وہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جائے گا، لیکن اللہ نے اتنی بڑی بڑی چھتریاں ہمارے باہر لگا دی، اور اس پہ سبز کے اندر سرخ پھول، اور کیا کچھ ہے۔ صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے، دل شکر کے ساتھ بھرتا ہے، دل کے اندر تقویٰ آنے لگتا ہے، پھر بندہ ہر چیز کو ایک نعمت سمجھ کے لیتا ہے، اور ایک ذمہ داری سمجھ کے اس کا حق دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آج اللہ جو میں تجھ سے لے رہا ہوں، کل مجھے اس کے بدلے میں کچھ تجھے بھی دینا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے لیے ایسے موقع استعمال کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے آخرت کے لیے کچھ ایسی راہیں بنا لیتا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس کو صرف یہی نہ ملے بلکہ آخرت میں بھی مل سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی خوبصورت چیزیں ہمیں دے رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے بھی ہمیں محروم نہ کرے۔ صرف آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہر چیز آپ کو جنت کی یہی دکھے گی۔ یہ جنت کے چھوٹے چھوٹے انٹروڈکشن ہے اس دنیا کے اندر، جس کو ہم شیطان کے کہنے پہ ادھر ادھر دیکھ کے گزار دیتے ہیں۔ کچھ جانوروں کی باتیں ہیں آگے۔ سمانی یا ازواج من نسنین و من الماز اثنین، پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों, क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया? तो इससे ज्यादा सालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे? यकीनन अल्लाह ताला जालिमों को राह नहीं दिखाता। आप कह दीजिए, जो कुछ अहकाम बजरिया वही मेरे पास आए, इनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो, या ये कि बहता हुआ खून हो, या खिंजीर का गोश्त हो क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का जरिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए, बशर्ते कि ना तो लज्जत का तालिब हो और ना हद से गुजरने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूर रहीम है। ये थी आयत नंबर 143 से 145। इसका उन्वान है शैतान की तरगीबात के असरात। तरगीब रगबत यानी शैतान की मोटिवेशन के इफेक्ट्स क्या इंसान पे आते हैं? अरब जो थे उनके अंदर गोश्त और दूध को हासिल करने के लिए चार मारूफ जानवर थे, भेड़, बकरी और ऊंट और गाय। वो जानवर जिनको दूध और गोश्त के लिए पैदा किया था, अरबों ने उसके मुख्तलिफ किस्म के कुलिए कानून बना लिए, हलाल और हराम के इतने रिवाज पैदा कर लिए कि जिसको अकल नहीं मानती। सीधी सी बात है कि ये जानवर जो है ये इंसान की खिदमत के लिए है, इनसे दूध लो और इनका गोश्त खाओ, बस खत्म। ये दो चीजें पैदा इसीलिए किए गए। उन्होंने बुतों के नाम पे इनको इस तरह से कर दिया कि बास जानवरों का दूध नहीं पीते थे, बास का गोश्त नहीं काटते थे। अब आप सोचिए, एक जानवर जिसको दूध आए और उसका दूध ना निकाला जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? खवातीन इस तजुर्बे से कभी गुजरती होंगी तो उनको पता है कि कितनी तकलीफ की सबब है, फितरत से हटने की बात है। अब नतीजा क्या होता कि ऐसे जानवरों को वो कान चीर देते, जानवर के साथ साथ चलते रहते, उसके ऊपर न बैठते। आज के दौर में देखिए तो इसी किस्म की कुछ चीजें दिखती हैं। जो आज के दौर का एक बहुत ज्यादा खतरनाक उठता हुआ फितना है ना, वो क्या है कि जानवरों को ज़िबा ना करो, क्यों? के पिटी फीलिंग होती है। यानी आज के दौर में लोग एनिमल राइट्स पे इतनी बात करते हैं, मेरे पास उसके फिगर्स मौजूद है, ऐसी खवातीन, ऐसे इदारे। इस वक्त जो चीज नई फितने के तौर पे आ रही है ना, वो ये है कि जानवरों से गोश्त ना लो और इनसे दूध ना लो। पता है क्यों? ताकि हर चीज आर्टिफिशियल बनाओ। दूध तो आर्टिफिशियल बन गए ना, सोया से जो सोया मिल्क निकलता है वो जानवर का दूध नहीं है। हम जब जानवरों की ये कैफियत रखें कि उनको फितरत के खिलाफ करें, इसी तरह आप देखिए कि जैसे पौधे, हर पौधा जाने से पहले अपने बीज देखे जाता है ताकि उसके बाद अगले साल फिर फसल हो। आज के दौर का फितना क्या है कि स्टरलाइज कर दो, एक बीज बस एक दफा उगता है और दैट्स इट, खत्म। हर दफा आपको हमसे बीज खरीदने पड़े और उसकी चूंकि पैदावार ज्यादा है, जानवरों को ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि वो 2 किलो दूध की बजाय 10 किलो दूध देने वाली बन जाए। आप कोई चीज देखें, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं, आप बड़े शौक से जूस लाते हैं, कहते हैं ऑरेंज जूस है, क्या है जी कि इसके अंदर विटामिन सी एडेड, ऊपर इंजेक्शन भी लगा होता है। मैं तो उसको देख के डर जाती हूँ कि इन्होंने इस इंजेक्शन को इस नेचुरल चीज के अंदर डाल के कुछ इंजेक्ट किया। आप देखिए, एडेड फुला, एडेड कैल्शियम, एडेड क्या मतलब है, अल्लाह को नहीं पता था। यानी इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ। एक दोस्त थी मेरी, लेबोरेटरी में काम करती थी, कहने लगी कभी भी होल मिल्क ना लिया करना। मैंने कहा क्यों, हमारे यहाँ तो कहते हैं जी खालिस दूध पियो। कहा ये खालिस नहीं होता, जो नेचुरल मिल्क होता है ना, फ्रेश मिल्क होता है गाय का, उसके अंदर अल्लाह सुबहान तआला ने कुछ इस किस्म का इंतजाम किया हुआ है कि जो उसके फैट के मॉलिक्यूल हैं सिर्फ 5% बॉडी के अंदर यूटिलाइज होते हैं और 95 बॉडी में से एक्सक्रीशन के लिए निकलते हैं। यानी जैसे कि उससे इंसान का निजामे हजम ठीक रहता है और वो जिस्म से एज इट इज निकल जाते हैं। ये फितरत का एक असूल है, इसीलिए आप देखिए कि दूध पीते ही कब्ज दूर हो जाता और इस तरह की कैफियत होती है। इसके बरक्स जो आज का पैस्चराइज मिल्क है वो उसको इतने हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं कि फैट मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं ना तो उनकी सारी फैट जब उस मिल्क के अंदर आ जाती है। अब जब आप प्योर मिल्क के नाम पे होल मिल्क पीते हैं ना तो 5% फैट लगने के बजाय वो 100% फैट आपकी बॉडी को लग जाती है। नतीजा क्या है कि आम फ्रेश मिल्क पियेंगे तो आपका पेट साफ होगा और आज के जो पैस्चराइज मिल्क है आप उसको पियेंगे तो और आपको गैस और एक हैवीनेस होगा। आपने फितरत का असूल तोड़ दिया। आप देखिए, फसलों को इंजेक्शन, बच्चों को पैदा होने से पहले इंजेक्शन और न जाने क्या कुछ हम आर्टिफिशियल दुनिया में जीते हैं और उसके असरात आज देखिए, नित नई बीमारियां। वही चीजें जो एक खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने एक सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन रखा हुआ, तो उसी को फॉलो करो। हम कुछ निकालते हैं, कुछ डालते हैं और बड़ी खुशी से लाते हैं। फिर इसके लिए एक और शोशा खुल गया, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का लफ्ज पता क्या है कि दो वाली चीज पांच की खरीद। वही चीज जो आप फ्रेश चीज ले सकते थे आप उसको ऑर्गेनिक स्टोर से खरीदेंगे क्योंकि ये प्योर है, दोबारा उसी पे पलटा है। कितना शोर मचा, बच्चे के लिए फुला फॉर्मूला, बच्चे के लिए फुला दूध और फिर आखिर में कहा माँ का दूध बेहतर है। अब अल्लाह ने माँ का दूध दिया, आप कहेंगे ये तो पतला बहुत है, अब इसमें मैं जरा कुछ और मिला के पिलाऊं। उस जात को ज्यादा अच्छा पता है। ऐसी चीजें चले दुनिया के रंग पे तो नुकसान होती हैं, लेकिन जब लोग इसको दीन बना लेते हैं तो उससे फिर इंसान वाकई अल्लाह ताला से भी दूर होने लगता है। शैतान के शोषों को जरूर समझना चाहिए और वही बचेगा जिसने अपनी जिंदगी को नेचुरल रखा। साफ सुथरी जिंदगी, सादा खाइए सादा पीजिए सादा जिंदगी बसर करें। सर्दी लगती है तो हम हीटर के आगे खड़े हो जाते हैं, गर्मी लगती है तो दूसरी तरफ जाके एसी खोल के बैठ जाते हैं। यानी हम जरा सा जिस्म को जज करने की हिम्मत नहीं देते। आज देखिए बच्चों में हिम्मत नहीं है, आज बर्दाश्त नहीं है। जरा गर्मी होती है उनका रंग लाल होने लगता है, जरा सर्दी आती है उनके हाथ ठंडे होते हैं, बर्दाश्त ही नहीं। पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास हर चीज मौजूद है। ये अल्लाह की नेमतें हैं, मैं इसे इनकार नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर आपको अपने आप को कुछ लम्हे फितरी माहौल में रखना चाहिए। वाललजीन हादू हर्रम नकुल्लजीज, और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए, और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियां हमने इन पर हराम कर दी थीं, मगर वो जो इनकी पुश्त पर या अंतड़ियों में लगी हुई हो या जो हड्डी से मिली हुई हो, इनकी शरारत के सबब हमने इनको ये सजा दी, और हम यकीनन सच्चे हैं। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बहुत वसी रहमत वाला है और इसका अजाब मुजरिम लोगों से नहीं टलेगा। ये थी आयत नंबर 146 से 147। इनका उनवान है सरकशी की सजा, दीनी रहनुमाओं का दीन को मुश्किल बना देना। किसी कौम को जब अल्लाह ताला उसकी सरकशियों की सजा देना चाहता है ना, तो यही करता है कि उनके अंदर ऐसे लीडर्स उठ जाते हैं दीन के नाम पे, जो दीन के जाहरी रिचुअल्स पे तो बहुत बात करते हैं, 19-20 को नहीं बर्दाश्त कर सकते। दीन की असल रूहानियत से वो खाली होते हैं और इतनी छोटी छोटी बातें कर देते हैं कि दीन का एक ऐसा ही रुख पेश होता है कि जिस पे फिर सिर्फ चंद लोगों के सिवा अमल करने वाले लोग, यानी बहुत थोड़े लोग उस पे अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब भी किसी को दुनिया में भेजा ऐसा दीन दिया जो काबिले अमल था। लेकिन अल्लाह ताला की एक सुन्नत याद रखिएगा कि अल्लाह की किताब की हामिल कोई कौम जब अल्लाह की बात मानने की बजाय सरकश होती है ना, तो अल्लाह ताला उस सरकशी की वजह से उसको कुछ मुश्किलात में डाल देता है, और इन्हीं मुश्किलात में एक मुश्किल यह कि शरीयत मुश्किल कर देता है। यहूद के अंदर यही हुआ, जब सरकश हुए बातें तो अल्लाह की मानी ना, नतीजा क्या हुआ कि कुछ ऐसे उलमा और ऐसे मजहबी रहनुमा आ गए कि जिन्होंने लोगों के लिए हलाल और हराम के कुलिये वजह करने शुरू कर दिए, फतवे बेचते, लोगों से पैसे लेके हलाल को हराम कर देते। इन्हीं में उन्होंने दो शर्तें अपने ऊपर लगा दी, एक ये था कि जिस जानवर के पांव चिरे हों, यानी जो पंजे होते हैं ना जैसे बीच में चिरे हुए होते हैं, और दूसरा जुगाली करने वाला। इन दोनों जानवरों को यहूद के उलमा ने अपने ऊपर हराम कर दिए। अब नतीजा क्या निकला कि इससे ऊंट भी हराम हो गया, खरगोश तक हराम हो गया, साफान एक जानवर होता है वो हराम हो गया। इसी तरह कुछ बातें उन्होंने जानवरों के जो नाहनों के ऊपर बात कर दी कि जिनके नाहन है उसको हराम कर दिया जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि शुद्ध मुर्ग और मुर्गी की कुछ किस्में थी उन पर हराम हो गई। अब हुआ क्या कि दीन मुश्किल हो गया। जब दीन मुश्किल होता है लोग फिर उन्हीं उलमा के पास जाते हैं और उनसे फिर कुछ ऐसे पैसे दे के कहते हैं अब हमारे लिए शरीयत आसान कर दो। अल्लाह ताला ने यहाँ ऐसे ही लोगों का इंजाम बताया कि जो लोग अल्लाह के दीन को एक एक्सरसाइज बुक बना लें और अपनी मर्जी से तब्दीलियां करें, आज तो आजाद हैं, कल पता चलेगा कि अल्लाह की किताब के अंदर तब्दीलियों से क्या हुआ। आज हमारे मुल्क में भी ऐसे है, हमारे अपने तौर पे अगर आप देखिए तो दीन के नाम पे क्या कुछ हम लोगों ने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया, खाने पीने के अलावा जिंदगी गुजारने के, इवन कुछ ऐसी चीजों का साथ इसका ताल्लुक है कि जिसका बिल्कुल दीन से कोई ताल्लुक नहीं। और वो लोग जब उनके सामने ऐसा दीन पेश होता है तो फिर वो इतना डर चुके होते हैं बेचारे कि घबराए घबराए वो बाज़ फिर उन चीजों को भी नहीं अपनाना चाहते कि जिसकी वजह से जिसको अल्लाह ताला ने जायज करार दिया। मसलन आप देखिए कि छोटी सी एक मिसाल दूंगी इबादत में से कि अल्लाह ताला ने जो इबादत हम पे नमाज की सूरत में रखी वो फराइज थे, अब उसके साथ सुन्नतें और नवाफिल थे, उसके एक दूसरे दर्जे का मुकाम है। आज हमने क्या किया कि नमाज को इतना लंबा कर दिया, मिसाल एक ईशा की नमाज 17 रकत की नमाज हमने उसको लाजिम कर दिया, हालांकि उसमें फर्ज सिर्फ 4 थे, बाकी चीजें सुन्नत थी और नफिल थी। फर्ज और सुन्नत और नफिल कभी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह की बात की हुई और इंसानों की अपनी खुशी से पड़ी हुई इबादत फर्क होती है। अब नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने ये फतवा दे दिया कि अगर पढ़नी है तो 17 पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी। जो पढ़ते थे पढ़ते रहे, शौक से पढ़े, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि अगर 17 से कम पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी, नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने नमाज छोड़ दी कि हम तो सारे दिन के पहले ही थके थे, अब कौन 17 पढ़े। मैं देखती हूँ वो लोग जो नमाज से दूर होते हैं वो सबसे ज्यादा ईशा की नमाज से दूर होते हैं। दीन मुश्किल हो गया, जब असल दीन लोगों के सामने आता है तो लोगों की आंखों के सामने यकीन करें कि रोशनी आ जाती है कि हम किस दीन पे थे और अल्लाह ताला हमें किस दीन की दावत देता है। सयकूलुल्लज़ीन अशरकू लौशा अल्लाहुमा अशरकना, ये मुशरिकीन यूं कहेंगे कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज को हराम कह सकते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकजीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कहिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे रूबरू जाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल से बातें बनाते हो। आप कह दीजिए बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ले आते। کرتا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لو جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے روبرو دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 148 سے 150. اس کا عنوان ہے دلیل اللہ کی نمائندہ ہے. ہمارا دین دلیل کا دین ہے. جب بھی کبھی دین کے اندر اضافے کر لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس ایک کرائیٹیرین ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور وہ دلیل ہے. یہی دلیل آج کے دور میں بھی ضروری ہے. ہم سب اس دنیا کے اندر جب کسی کو نیکی کا کوئی کام کرتے دیکھیں، اچھا یا برا، تو آج سے ایک نیت کر لیجئے، اور وہ کیا کہ جب کبھی مجھے دین کے کسی کام کی دعوت دی جائے گی تو میں صرف ایک لفظ ضرور پوچھوں گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس دنیا میں اللہ کی نمائندہ ہے. اللہ نے دنیا میں دلیل کو پیدا کر کے دین کو محفوظ کر دیا. اگر دلیل نہ ہو تو ہر بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میں کچھ کہہ دوں وہ دین بن گیا، آپ کچھ کہہ دیں دین بن گیا، آپ کچھ کہہ دیں دین بن گیا. اصل دین کہاں گیا؟ جس طرح کسی بھی ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ جو حکومت کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی سٹیمپ ہوتی ہے، اس کا قانون ہے، اس کی لا ہے، وہی مانا جاتا ہے. اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں بھیجے اور ہر بندہ اپنی مرضی سے دین کے نام پہ کچھ نہ کچھ کرنے لگے؟ تو لہٰذا دلیل کو ماننے والا دلیل کے آگے جھکتا ہے. لیکن یاد رکھیے، دلیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہش ہوتی ہے. بہت ساری دلیلیں سامنے نظر آ جاتی ہیں، لیکن جو انسان خواہش پرست ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ دلیل کو بھی چھٹلاتے ہیں. ایسے لوگوں کی پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الآخر رکھا ہے، جہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. قل تعالوا واتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کرو، وہ تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے بھی ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہوں، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ ہے آیت نمبر 151. اس کا عنوان لکھیے نبی پاک کا وصیت نامہ. اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. بلکہ اس کے بعد اگلی آیت بھی ساتھ ملا کے ہم سب پہ بات اکٹھی کریں گے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، یعنی سن رشد کو، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف والی کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہو اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہ تھی آیت نمبر 152 سے 153. اس کا عنوان ہے سیدھی راہ چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے. ان آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے مشرکین مکہ کی ان خود ساختہ رسومات کے تذکرے کے بعد اب دین کی ایک خوبصورت ترتیب پیش کی. یہ 10 احکامات ہیں ان آیات میں کہ جو بندہ بالترتیب ان پر عمل کرنے لگے گا انشاءاللہ اس کو دین کی اصل روح بھی مل جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کے عمل قبولیت والے ہوں گے. سب سے پہلی چیز جو کسی بندے سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رب کو ایک مانے، اس کی بڑائی کا غلبہ انسان کے دل پر اتنا چھایا ہو کہ اس کے سوا وہ کبھی کسی کو قابل بھروسہ نہ سمجھے. انسان کی ساری امیدیں رب سے ہوں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرے، اور اللہ سے زیادہ وہ محبت کسی سے نہ کرے. اس کے بعد دوسرا درجہ والدین کا آتا ہے. اکثر حالات میں والدین کمزور اور محتاج ہوتے ہیں اور اولاد طاقتور ہونے لگتی ہے. ایسے وقت میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوئی موٹیو یا اس کا کوئی محرک ہمیں نہیں دکھتا، سوائے اس کے کہ ایک انسان حق شناس ہو. वो एहसान फरामोश ना हो, वो जाने कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा मामला किया, आज मुझे भी उनके साथ करना है। इसी तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो इंसान अल्लाह के आगे झुकता है वो अपने वालदैन के आगे भी झुक के रहे, उनको अपने से दूर ना करे, उसके बीवी बच्चों की मोहब्बत उसको माँ बाप के तकाजे पूरे करने से दूर ना कर दे, और ऐसा शख्स ही अपने आप को एक असूल पसंद और हक शनास शख्स साबित करेगा। दुनिया में कुछ लोगों के इतने एहसान होते हैं हम पे कि हम उनको कुछ दे नहीं सकते। सारी दुनिया का माल जमा हो जाए तो उनका हक नहीं दे सकते, और सारी दुनिया की नेमतें उनके आगे ढेर कर दे फिर भी कुछ नहीं दे सकते। और इन्हीं लोगों में दो किस्म के लोग हम सबके सामने होते हैं, एक हमारे माँ बाप और एक हमारे उस्ताद। माँ बाप जो होते हैं वो आसमान से दुनिया पे लाते हैं, दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, और उस्ताद हमें जमीन से उठा के आसमानों की बुलंदियों पे पहुंचाते हैं, वो हमारी मेराज करते हैं। जो अपने इन दो रिश्तों के साथ मुखलिस होगा वो अल्लाह के हक को भी पहचानेगा। लेकिन आज खुदा फरामोशी की दुनिया में जहाँ लोग अल्लाह को भूल गए, वहाँ माँ बाप को भूल गए, वहाँ रिश्तों का तकद्दस नहीं रहा, वहाँ उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एक बाजारी रिश्ता बन गया, वो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता बन गया। ऐसी तमाम चीजों से बचने के लिए इंसान को चाहिए क्या कि वो अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़े। जितनी अल्लाह की किताब इंसानों को इंसानों के हकूक दिलाती है, उतनी दुनिया की कोई दावत कोई नारा किसी इंसान को वो हक नहीं दे सकता। फिर जब इंसान माँ बाप के हकूक देने लगता है, अल्लाह के हकूक को पहचानता है, तो फिर उसके मिजाज के अंदर एक खूबसूरती पैदा होती है, और वो क्या फिर वो अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता है। बस दफा देखिए कि जहां माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती ना, वहां औलाद से भी मोहब्बत नहीं होती। एक औरत जिसका तذکرہ पीछे मैं आपसे कर रही थी कि जानवरों के हकूक की इतनी वो उसका झंडा उठाने वाली है कि उसने मुहिम चलाई हुई है कि किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया जा सकता खाने के लिए, लेकिन उसके अपना जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको उससे इतनी नफरत थी कि उसने उसको अपने साथ नहीं रखा और दूसरे किसी और घर में उस बच्चे को किसी और के साथ रखा। यानी बाज़ दफ़ा जब इंसान के दिल में अफरात और तफरीत आता है ना, तो अपने बच्चों का दुश्मन हो जाता है, और ऐसे दुश्मनी में सबसे बड़ी दुश्मनी क्या होती है कि हम इसको खिलाएंगे कहाँ से। मैं सोचती हूँ कि माँ बाप जब अपने बच्चे को इस वजह से जाया कर देते हैं कि ये हमारे साथ खाएगा और पिएगा, तो गोया कि उन्होंने खुदाई को अपने हाथ में ले लिया और रज़ाक होना उन्होंने अपने आप को समझ लिया। तो अल्लाह ताला ने किसी को इसकी इजाजत नहीं दी कि कोई अल्लाह की दीवी जान को काटे, चाहे वो उसका अपना ही बच्चा क्यों ना हो। फिर अगली आयतों में हमने देखा यतीम का माल। यतीम किसी मुआशरे का पिसा हुआ शख्स होता है, इसके साथ मोहब्बत या हमदर्दी करने का कोई मोटिव ही नहीं होता, कोई क्यों प्यार करे। दुनिया में देखिए माँ बाप होते हैं ना, तो लोग उसके बच्चे को प्यार करते हैं, माँ बाप को दिखाने के लिए बच्चे को भी प्यार करते हैं, लेकिन जिनके पीछे माँ बाप नहीं उसके साथ तो प्यार बस वही कर सकता है कि जो बंदे को रब का बंदा समझ के प्यार करे, और जो बाकिरदार हो, और जो सिर्फ फायदों और मसलहतों का ही रसिया ना हो। आप कह सकते हैं कि यतीम के साथ अच्छा सलूक किसी मुआशरे के अंदर किसी इंसान की अच्छाई की एक दलील बन जाता है। ऐसा बंदा अल्लाह से ही डरेगा तभी वो काम करेगा। फिर इसके बाद हमने एक और चीज देखी, और वो थी इंसाफ और अदल की बात। देखिए कि कायनात की हर चीज जो है वो इस तरीके पे चल रही है कि कुछ ना कुछ दूसरे को देती है। आप देख लीजिए पूरा सिस्टम जिसको आप एक पूरा सर्कल पे लेके आते हैं, तो कहीं ऑक्सीजन दी जा रही है तो कहीं ली जा रही है, कहीं पानी दिया जा रहा है तो कहीं लिया जा रहा है। यही असूल अल्लाह ताला इंसान को जिंदगी में देते हैं कि तुम दुनिया में दूसरों को कुछ दो और कुछ लो, जो अपने लिए लेना चाहते वही दूसरे को दो। इसी का नाम अदल है। ये नहीं है कि तुम्हारे अपने लिए पैमाने और हों और दूसरे के लिए दूसरे हों। अल्लाह ताला ने जो इंसान को दुनिया में जीने का हक दिया है ना, वो अदल पे दिया है। ये कायनात इक्वलिटी पे नहीं बेस करती, और ये कायनात जो है ये आज़ादी और फ्रीडम पे नहीं चलती, ये अदल पे चलती है। छोटी सी एक मिसाल दूंगी कि अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं रिश्तों का तकद्दुस और खाने पीने और ओवरऑल, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी को कपड़ा नापना है, उसके हाथ में एक मीटर हो। अब उस एक मीटर के तहत वो कपड़ा नापेगा तो बिल्कुल ठीक नापेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे पास एक पैमाना मौजूद है, और सबको पता है 39 इंच का एक मीटर होता है। लेकिन बिलफर्ज एक शख्स है जिसके हाथ में पैमाना ही गलत पकड़ा हुआ है, वो 34 इंच का पैमाना पकड़ ले और वो आपका कपड़ा नापना शुरू करे, बावजूद इसके कि उसकी नीयत खालिस है, वो ईमानदार है, लेकिन उसका पैमाना गलत है, वो कभी भी आपको इंसाफ नहीं दे सकता। बिल्कुल यही मिसाल है इस चीज की कि अल्लाह के दिए हुए पैमानों के अलावा जब लोग जिंदगी के अंदर सूल और जाब्ते बनाते हैं, तो नतीजा क्या है कि वो जितना मर्जी इंसाफ का नारा लगा ले, औरत का हकूक दें मर्द को दें, वो दे ही नहीं सकते। उसके लिए जरूरत क्या है कि उनके हाथों में वो मेयार और वो पैमाने दिए जाएं जो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ लोगों के साथ अच्छी बात की का जिक्र हुआ कि लोगों के साथ अच्छी बात किया करो। इस दुनिया में रहते हुए कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ लोग ऐसा मामला कर देते हैं या हम लोगों के साथ ऐसा मामला कर देते हैं कि जिसके अंदर हम जुल्म कर देते हैं। हम मोहब्बत के नाम पे भी जुल्म करते हैं, हम नफरत के नाम पे भी जुल्म करते हैं। ऐसे वक्त में अगर किसी इंसान से कुछ ऐसा काम हो जाए तो वो फौरन इस कायनात को देख ले कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सबको अदल और इंसाफ के साथ रखा है। ये नहीं कि सूरज है तो चांद भी आ जाए, और सूरज चला गया तो चांद के अभी मेरा आने का मूड ही नहीं, एक सेट सिस्टम के साथ चल रही है। और इसमें भी हम सब के लिए तदब्बर की दावत है कि अल्लाह ताला हमें इन हुक्मों पे अमल करने वाला बना दे। जिसने इन सारे अहकामात को तरतीब से ले लिया, ये है सिरात मुस्तकीम। और जो इससे हटेगा ना, इन चीजों को इधर उधर कर देगा, तो फिर उसका हाल क्या है कि वो सुबुल पे चल पड़ा। और अल्लाह ताला हमें सुबुल पे चलाने की बजाय सिरात मुस्तकीम पे रख दे। सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसना व तफसीला लिकुल्ली शयइन। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और सब अहकामात की तफसील भी हो और रहनुमाई और रहमत भी हो, ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। और ये किताब है जिसको हमने भेजा, बड़ी खैर और बरकत वाली है, सो इसका इत्तेबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। कहीं तुम लोग यूं ना कहो कि किताब तो सिर्फ हम में से पहले जो दो फिरके थे उन पर नाजिल हुई और हम इनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे, या यूं ना हो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज्यादा राह रास्त पर होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक किताब वाजे और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी है। अब इस शख्स से ज्यादा सालिम कौन होगा जो हमारी आयतों को झूठा बताए और उससे रोके। हम जल्दी इन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, इनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए, या इनका रब इनके पास आए, या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान इस वक्त काम ना आएगा जो इससे पहले ईमान नहीं रखता था, या इसने अपने ईमान में कोई नई कमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। ये है आयत नंबर 154 से 158। इसका उनवान है इख्तियार के बावजूद बेइख्तियार बन जाओ। इन आयत में किताब को एक बड़ी खूबसूरत किताब कहा गया कि ये है वो किताब जो तुम्हारी जिंदगी के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजी, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। आप देखिए कि किताब क्यों आती है कि उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। ये किताब इंसान को रास्ता दिखाती है, लेकिन जब लोग इस किताब को समझते नहीं तो नतीजा क्या होता है कि सारी जिंदगी बंद किताब को बरकत के तौर पर उठाते रहते हैं, या बगैर समझ आए उसके अरबी के लफ्जों को समझ के बगैर पढ़ते रहते हैं इस सोच से कि इस पे अजर मिलेगा। यकीनन मिलेगा अजर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किताब का असल मकसद पूरा नहीं हुआ। किताब किस लिए आती है कि उसके मुताबिक अमल किया जाए, और जो शख्स इस किताब को अमल की नीयत से उठाएगा फिर उस किताब को अपनी जुबान में समझना पड़ेगा। इन आयतों को पढ़ते हुए अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता बना कि मैं इस किताब के एक एक लफ्ज को अपनी जुबान से अदा कर सकूं और इसको समझ सकूं। कि आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं आती कि आपके सामने अरबी कुरान पढ़ा जाए और आप उसको उर्दू में समझें? कितनी सिस्टर्स हैं जिनके दिल में ये ख्वाहिश है। यानी अगर ये सिर्फ मैं अरबिक से पढ़ूं, ये मेरे पास एक छोटा कुरान होता है, ये सामने वाले से इसलिए नहीं पढ़ रही कि उस पर उर्दू लिखी हुई है ना। ये देखिए, ये छोटा सा कुरान है और इसको अब मैं ऐसे अल्लाह के हुक्म से जहां से खुल जाता है थोड़ा सा आपके सामने पढ़ूं। सिर्फ एक गोल आपको देना चाहती हूँ कि ये दुआ हम सब अपने लिए कर सकते हैं। ये देखिए, जहां से खुल गई इंशाल्लाह मैं वहीं से पढ़ दूंगी अल्लाह के हुक्म से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बेशक वो लोग जो यतीमों के माल को जुल्म से खाते हैं, बेशक वो अपने पेटों में आग भरते हैं और अनकरीब वो आग में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में नसीहत करता है कि मर्द के लिए दो औरतों के बराबर है, और अगर औरतें दो या दो से जायद हों तो उनके लिए दो तिहाई है, और अगर एक बेटी हो तो उसके लिए बाप की आधी जायदाद है, और माँ बाप दोनों के लिए छठा हिस्सा है उसमें से जो कि औलाद छोड़ दे। और इसके आगे ये आयतें विरासत है। अब आप देखिए, अगर हमें ये आयत नहीं समझ आती, हम बेटियों को विरासत में कैसे हिस्से देंगे? आज कितने घरों में यतीमों पे जुल्म हो रहा है। सगे चचा और चचा के बेटे और भाई और अपने ही रिश्तेदार जो है वो रिश्तेदारों का माल खा जाते हैं। ये क्यों होता है? ये बंद किताब है, ये अरबिक में थी। आप में से कितनों को समझ आ गई होगी, लेकिन आज भी दुनिया में इतने लोग हैं जिनको ये किताब समझ नहीं आती। क्या हम इस वक्त इन आयतों के तर्जमे किसी से पूछेंगे, किसी से पूछने जाएंगे कि बताओ ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा? जब तक ये किताब आपके सीने में नहीं जाएगी, अपनी जुबान पर, ये आपको अपनी नहीं लगेगी। छोटी सी इसकी मिसाल दे देती हूँ कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपने लफ्जों में बोल रही हूँ तो शायद आपको ज्यादा फोकस हो रहा है, और अगर मैं हर बात कहीं किताब से देखूं, पढ़ूं, नोट्स खोलूं को ठहर जाए, जरा ये आगे हो गया, पीछे हो गया, क्या आप इस तरह फोकस करेंगे? हम आम दिन में कितनी दफा बातें करते हैं, क्या हम में से कोई देख देख के बातें करता है, किताबें खोल खोल के बातें करता है? तो क्या हमारा दिल नहीं चाहता कि अल्लाह की किताब हमें इस तरह समझ आए कि हम उसको अपनी जुबान में पढ़े? दुआ मांगिए कभी महरूम ना रहे, हर एक कर सकता है। यकीन करें अगर मेरे जैसा बंदा ये काम कर सकता है तो आप जैसे तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आप मेरे से कितना ज्यादा दुनियावी लिहाज से अच्छे पढ़े हुए होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे, आपके साथ बहुत कुछ होगा। सिर्फ दुआ कर लीजिए कि अल्लाह इससे पहले कि ये कलाम, ये कुरान पाक दौरे कुरान में मुकम्मल हो, हमारे लिए कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि हम इस कुरान को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ सकें। सिर्फ आपको अपनी जिंदगी के तकरीबन 18 मंथ देने होंगे। डिपेंड करता है आप कितने दिन देते हैं। आप एक साल में भी कर सकते हैं, आप 1.5 ईयर में भी कर सकते हैं, आप 2 साल में भी कर सकते हैं, और आप 3 साल में भी कर सकते हैं। पहली सूरत में आपको 5 दिन देने होंगे, दूसरी सूरत में आपको 4 दिन देने पड़ेंगे, और तीसरी सूरत में आपको 3 दिन देने पड़ेंगे हफ्ते में। और अगर किसी को 10 साल में करना है तो 1 दिन में भी आ जाए। लेकिन जिसको अपनी जिंदगी का यकीन है वो तो बात सोचेगा। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला बस हर दिन एक मोहलत है। इससे पहले कि दुनिया से जाएं, कम से कम हम तेरी किताब से इस तरह तो जुड़ जाएं कि हम इसको समझते थे, और अल्लाह ताला इस कुरान के पढ़ने के दौरान हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानू शिया लस्त मिनहुम फी शैइन। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर इनको इनका किया हुआ जितला देंगे। मंजा बिल हसनति फलहु अश्रु अम्थालिहा। जो शख्स नेक काम करेगा इसको इसके 10 गुना मिलेंगे, और जो शख्स बुरा काम करेगा इसको इसके बराबर ही सजा मिलेगी, और इन लोगों पर कोई जुल्म न होगा। ये थी आयत नंबर 159 से 160। इसका उनवान है कदरदान रब। एक करोगे तो 10 मिलेगा, इससे भी ज्यादा फिर कोई देने वाला होगा? बाय 1 गेट 9 फ्री। लेकिन अल्लाह के इस 1 के 10 वही लेते हैं जो अल्लाह के दीन को उसी तरह कबूल करें जैसे उसने दिया। जो लोग बुनियादी बातों को छोड़कर जुज़वी बहसों में पड़ जाते हैं वो दीन को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अल्लाह अपने नबी को कहते हैं, तुम ऐसे लोगों में न होना जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े कर दिए। असल दीन वही है जो फितरत के मुताबिक है। पिछली आयतों में आप देखिए कि 151 से 153 में जो 10 अहकाम थे बिल्कुल सादे से हुक्म थे, कोई भी बंदा थोड़ी सी समझबूझ वाला उस पर अमल कर सकता है। लेकिन जब लोग इख्तलाफात और फिरकाबाजी का शिकार होते हैं, जब कौमों के अंदर जवाल आता है, तो ऐसे रहनुमा पैदा हो जाते हैं कि सादे सादे हुक्मों के अंदर गैर फितरी किस्म की ऐसी शिकें पेश करने लगते हैं कि जिससे दीन टूट के रह जाता है। जब लोग एक दीन से जुड़ते हैं तो वो इसी तरह जैसे एक जिस्म के अंदर एक दिल है। आप देखिए कि तौहीद है ना, एक रब का हम बनेंगे तो हम सबके बन जाएंगे। आपके जिस्म में 2 दिल क्यों नहीं है? आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, होंठ 2 हैं। वजह क्या है कि दिल कंट्रोल करता है, दिल सदर है, दिल आपके जिस्म का हाकिम है। इंशाल्लाह कभी आप सुन सकेंगे, एक सीरीज है हमारे पास दिल को बदलना है, तो उसमें एक पूरा टॉपिक है कि दिल जो है वो हुक्मरान है। दिल एक है ना, इसी तरह अल्लाह की जात एक है। बिल्कुल यही वहदत हमें इस कायनात में मिलती है। जब लोग दीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं ना, तो नतीजा क्या होता है कि एक गली के एक कोने पर आपको एक मस्जिद दिखती है तो दूसरे कोने पर दूसरी दिखती है। नतीजा क्या होता है कि हर बंदा अपनी मस्जिद को बढ़ाने के ख्वाब देख रहा है, हर बंदा इस बात का इजहार करता है कि ये जगह तंग है, लेकिन वो ये नहीं करते कि अच्छा हमारे पास जगह नहीं तो जाओ सड़क के दूसरी तरफ उस कमरे में पढ़ लो, वो भी अल्लाह के बंदों मस्जिद है। मेरा तो दिल रोता है, यकीन करें कि मैं इस चीज पे इतनी तड़प महसूस कर रही हूँ इस वक्त अपने दिल में कि आप सोच नहीं सकते। हर गली में मस्जिद हो सकती है, कोई शक नहीं, हर मोहल्ले में मस्जिद हो सकती है, एक शहर में 100 मस्जिदें भी हो सकती हैं। शर्त एक है कि वहां सबसे जो जाए पैगाम वो एक ही पैगाम जाए, जहां जाने वालों को एक ही पानी मिले, वो किसी जगह रुके नमाज पढ़े उनको ये ना लगे कि दूसरी जगह गए थे तो ऐसे पढ़ा था अब यहाँ क्या है। लेकिन जब मैनेजमेंट के मसले होते हैं, जब इंसानों की बड़ाइयां सामने आती हैं, तो लोग इत्तेहाद को तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते। दुआ कीजिए अल्लाह इस टूटी हुई और बिखरी हुई उम्मत को एक कर दे, और ये सिर्फ एक ही सूरत पे एक होगी जब सब अपनी चीजों को नीचे डाल के अल्लाह की बात और अल्लाह की किताब को ले लेंगे। और हमारी जिंदगी में भी इत्तेहाद तभी आता है जब हम अपनी इस किताब को अपनी जिंदगी में ले आते हैं। قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया, वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम का जो अल्लाह की तरफ यकसूत है, और वो शिर्क करने वालों में से न थे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ है, और सब मानने वालों में से मैं पहला हूँ। आप फरमा दीजिए, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ, हालांकि वो मालिक है, वो हर चीज का। और जो शख्स कोई भी अमल करता है वो इसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको बतलाएगा जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया, ताकि तुमको आजमाए उन चीजों में जो तुमको दी है। बिल यकीन आपका रब जल्द सजा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मगफरत करने वाला मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 161 से 165। इसका उनवान है मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए, और यही था सूरत अलनाम का थीम कि ये तुम किसके बने फिरते हो, तुम बुतों के बनते हो, तुम अपने जमीनी खुदाओं के बनते हो, ये तुमने हलाल और हराम किसके लिए कर दिया, तुमने उस खूबसूरत दीन को क्यों इतना आलूदा कर दिया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगम्बरों को दिया गया। आज भी जो शख्स अल्लाह की रहमत और उसकी नुसरत का मददगार बनना चाहता है, अल्लाह की रहमत और उसकी नुसरत में हिस्सेदार बनना चाहता है, तो फिर उसको उसी दीन को लेना पड़ेगा जो प्योर दीन होगा, जो दूसरों के नजरियात से पाक, जो दूसरों की तब्दीलियों से पाक। और ये वही दीन है जो कायनात का दीन है, ये वही दीन है जिस पे सूरज चांद सितारे चल रहे हैं। आज हम दुनिया में आते हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है उसके बाद तीसरा आ जाता है। यही हाल अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में सिखाते हैं कि जब तुम जाओ तो तुम्हारे पीछे कुछ बाकी हो, लेकिन बाज हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग सिरात मुस्तकीम से खुद ब खुद पीछे हटते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि कोई दूसरा मेरा बोझ उठा लेगा, लेकिन फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, नहीं कोई बोझ उठाएगा बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का। तो लिहाजा हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमने इस सूरत में जितनी बातें पढ़ी उसको अमल की तौफीक दे। शायद आपको अब अंदाजा हुआ होगा कि सूरत अलनाम के नाजिल होने के ऊपर फरिश्ते क्यों उतरे थे। मैंने आपको आगाज में बताया था कि फरिश्ते उतरे थे इतने ज्यादा, और अल्लाह के नबी पे वो वही इतनी बोझल थी, क्योंकि इतना इसमें तौहीद और शिर्क का जिक्र है। और अल्लाह करे कि हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में उसी लेवल पे लाके समझ सकें जहां इनको होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ी सूरत पूरी हुई, अब हर सूरत अगली से छोटी होगी।